राज श्रीमद भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 12 शीर्षक कुमारों एवं अन्यों की सृष्टि श्लोक क्रमांक 1 और 2। अनुवाद श्री मैत्रेय ने कहा, हे बहुज्ञ विदुर, यहां तक मैंने तुमको काल की आख्या से लक्षित होने वाले श्री भगवान के स्वरूप की महिमा बतलाई है। अब तुम मुझसे वैदिक ज्ञान के अधिष्ठान ब्रह्मा जी की सृष्टि के विषय में सुन सकते हो।
ससर्जाग्रेन्धतामिश्रम् अथ तामिश्रमादिकृत् महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, ब्रह्मा ने सबसे पहले आत्म प्रवंचना, मृत्यु की चेतना, भग्न मनोरथ होने पर क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव, मिथ्या दैहिक धारणा अर्थात अपनी वास्तविक सत्ता की विस्मृति जैसी अविद्यात्मक प्रवृत्तियों की सृष्टि की। तात्पर्य, विभिन्न प्रकार की योनियों के जीवधारियों की यथार्थ सृष्टि करने के पहले ब्रह्मा के द्वारा उन परिस्थितियों की सृष्टि की गई जिनके अधीन जीवधारी के को भौतिक जगत में रहना होता है। जब तक जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं भूलता है, उसके लिए जीवन को भौतिक स्थितियों में रह पाना असंभव है। इसलिए सांसारिक जीवन की पहली शर्त है अपने स्वरूप की विस्मृति और अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर प्राणी के लिए मृत्यु से भीत होना अनिवार्य है। यद्यपि एक विशुद्ध जीवात्मा अमर्त्य और अजन्मा है, भौतिक प्रकृति के साथ यह मिथ्या तदात्म्य ही उन वस्तुओं के मिथ्या स्वामित्व का कारण है जो उच्चतर नियंत्रण की व्याख्या द्वारा प्रदान की जाती है। जीवात्मा को अपने शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए तथा बद्ध जीवन में स्वरूप साक्षात्कार के हेतु कर्तव्यों के संपादन के लिए सब प्रकार के लौकिक साधन प्रदान किए गए हैं, किंतु मिथ्या तदात्म के कारण बद्ध जीव परमेश्वर श्री कृष्ण की संपत्ति पर मिथ्या स्वामित्व की भावना द्वारा फंदे से फंसा लिए जाता है। इस श्लोक में यह स्पष्ट है कि ब्रह्मा स्वयं परमेश्वर श्री कृष्ण की सृष्टि है और 5 प्रकार की अविद्याओं को जीवात्माओं को संसार में प्रतिबंधित करती है। ब्रह्मा जी की सृष्टियां हैं। जब यह बात समझी जा सकती है कि बद्ध जीवात्माएं ब्रह्मा की जादू की छड़ी के नियंत्रण में हैं, तो जीवात्मा को परमेश्वर श्री कृष्ण के बराबर समझना अत्यंत हास्यास्पद है। जैसा यहां बताया गया है, पतंजलि भी 5 प्रकार की अविद्या स्वीकार करते हैं।
हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण। कुमारों एवं अन्यों की सृष्टि। ब्रह्मा ने सबसे पहले आत्म प्रवंचना, मृत्यु की चेतना, भग्न मनोरथ होने पर क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव, मिथ्या दैहिक धारणा अर्थात अपनी वास्तविक सत्ता की विस्मृति जैसी अविद्यात्मक प्रवृत्तियों की सृष्टि की। यह तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करते हैं तो जीवात्माओं को शरीर देने के पहले, शरीर प्रदान करने के पहले और अन्य जो ग्रह हैं, लोक हैं, उनकी रचना करने के पहले उनको वो वातावरण बनाना पड़ता है जिसके भीतर इन जीवात्माओं को रहना है, क्योंकि बद्ध जीव के लिए एक विशेष वातावरण की आवश्यकता है। बद्ध जीव को चाहिए एक ऐसा वातावरण जहां भगवान श्री कृष्ण की विस्मृति हो। अगर विस्मृति भगवान की नहीं होती है तो भोग कैसे कर सकता है जीव? भगवान के धाम में भोग प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं है, शून्य है। लेकिन जब भोग प्रवृत्ति जीव में जागृत हो जाती है तो जीव को यहां भेजा जाता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्गे यान्ति परंतप। सर्ग, ये सर्ग जो है इसमें यहां यान्ति यहां आना पड़ता है। क्यों? इच्छा द्वेष समुत्थेन, ये द्वंद जब हो जाते हैं, द्वंद मोहेन, मोह में पड़ जाता है जीव, तो उस समय माया की एक शक्ति जिसको कहते हैं प्रक्षेपात्मिका शक्ति, ये जो शक्ति है जीव को भगवान के धाम से भौतिक संसार में फेंक देती है। और इसके बाद में क्योंकि जीव के भीतर ये भोग की प्रवृत्ति है जिससे वो संसार को भोगना चाहता है, ये भोग की प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए माया को और एक कार्य करना पड़ता है। और वो ये कार्य है कि जीव के आंखों के सामने एक आवरण या पर्दा डालना पड़ता है जिससे जीव अपना स्वरूप भूल जाता है। तो माया के इस शक्ति को कहते हैं आवरणात्मिका शक्ति। तो प्रक्षेपात्मिका शक्ति और आवरणात्मिका शक्ति, तो वास्तव में ये जो सारा संसार है ये इसलिए बनाया गया है कि जीव भोग करना चाहता है। श्री श्री राधा गिरिधारी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। इसलिए ये भौतिक संसार बनाया गया है। तो अगर जीव का स्वरूप जो है वो स्वरूप जीव को यहां याद आ जाए तो भोग कैसे करेगा? तो ब्रह्मा जी के पास ये कार्य है कि अविद्या या विस्मृति का वातावरण पैदा करें जिसमें जीव को ये न पता चले कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है और मुझे कहां जाना है। ये जब विस्मृति हो जाती है तो फिर जीव बद्ध अवस्था में अच्छी तरह से माया के चंगुल में फंस जाता है और फिर से बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। तो ब्रह्मा जी इनका ये कार्य है कि नाना प्रकार के ये अविद्याएं बनाएं और इन अविद्याओं की रचना करने के बाद में फिर वो नाना प्रकार के योनियों का की रचना करते हैं और फिर सारे योनियों को इस वातावरण में फेंक देते हैं। वातावरण से जीव प्रभावित हो जाता है, उसके अंदर ऐसे ही सूक्ष्म देह में ऐसे छप्पे पड़ जाते हैं और फिर ये भोग की प्रवृत्ति और भी प्रबल हो जाती है। और जैसे जैसे ये प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है वैसे वैसे वो पाप कर्म करने लगता है। और जैसे पाप करने लगता है तो पाप कर्म के फल भुगतने पड़ते हैं और इस प्रकार से जीवन मृत्यु के संघर्ष में और चक्कर में पड़ जाता है। तो ये है तरीका भौतिक संसार का। यहाँ पांच प्रकार के अविद्याओं का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत में अलग अलग जगह इन पांच प्रकार के अविद्याओं को थोड़ा अलग अलग प्रकार से बताया गया है, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वास्तव में है एक ही चीज, लेकिन कभी कभी थोड़े अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे एक जगह ये बताया जाता है कि पांच प्रकार की जो अविद्याएं हैं वो इस प्रकार है। एक है अविद्या। अविद्या मतलब जिस प्रवृत्ति से या जिस ज्ञान से, वो वास्तव में ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस जानकारी से जीव सत्य को असत्य को सत्य मानता है। असत्य र सत्य को रे मानी, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, यह है अविद्या। असत्य को सत्य मान बैठता है, दुख को सुख मान बैठता है, अशाश्वत चीज को शाश्वत मान बैठता है। इस प्रकार से जब जीव ऐसे धारणा में आता है तो वो अविद्या के चंगुल में फंस जाता है, तो यह है अविद्या। दूसरी बात है अस्मिता। अस्मिता मतलब अहंकार, जिससे जीव अपने आप को शरीर समझने लगता है और फिर शरीर के सारे चीजों के साथ एक लगाव बनाए रखता है। फिर तीसरा है राग। राग का मतलब है कि वो ये भौतिक संसार को भोगना चाहता है, ये संसार के सुख से आसक्त हो जाता है और ये संसारी सुख प्राप्त करने के लिए जो भी चीजों की आवश्यकता है उनके प्रति भी आसक्त हो जाता है और इनको प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाता है। माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान, प्रहलाद कहते हैं ना, माया सुखाय। माया सुखाय मतलब चपल सुख। ये चपल सुख अर्थात क्षणिक सुख के लिए क्या करता है, माया सुखाय भरम, बहुत भारी जो बोझ है अपने कंधों पे उठाने के लिए तैयार हो जाता है। उद्वहतो विमूढ़ान, इसलिए जीव जो है मूढ़ बन जाता है। मूढ़ नहीं, विमूढ़। विमूढ़ मतलब विकृष्ट रूपेण मूढ़, मतलब अत्यंत मूढ़ बन जाता है, तो इसको विमूढ़ कहते हैं। तो विमूढ़ बन जाता है, क्यों? क्योंकि वो ये माया सुख से प्रभावित हो जाता है, इसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। फिर राग हुआ, और राग के साथ साथ क्या होता है, जब राग होता है तो द्वेष होता है ना? राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरण, गीता में भगवान बताते हैं राग और द्वेष ये दो द्वंद होते हैं। तो द्वेष का मतलब क्या है, ये संसार में तो केवल हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते, भौतिक सुख भी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति ऐसे संसार में नहीं है जो हमेशा केवल भौतिक सुख ही प्राप्त कर सकता है। सुख के साथ साथ में दुख भी आएगा। जैसे जैसे सुख दरवाजे के अंदर आया कि हमें जानना चाहिए कि दुख दरवाजे के बाहर खड़ा है, और जैसे सुख भोग लिया वो दुख आ ही गया अंदर, और दुख भोग रहे हैं तो हो सकता है सुख भी आ रहे अंदर से। ये दुख सुख सुख दुख ये चलता रहता है। तो जब बद जीव ये भौतिक सुख के प्रति आसक्त हो जाता है, इसको राग कहते हैं, तो उसी प्रति भौतिक जो दुख है उसके प्रति वो दूर होना चाहता है, इसको कहते हैं द्वेष। वो भौतिक कष्ट उठाना नहीं चाहता है, केवल भोगना चाहता है भौतिक सुख, लेकिन ये संभव नहीं है। इसलिए पूरी पूरी कोशिश करता है किस प्रकार से संसार में कष्टों का निवारण हो जाए, किस प्रकार से कष्टों को हमारे ऊपर आए नहीं, और नाना प्रकार के वो कार्य करता है, बहुत परिश्रम करता है कष्ट को दूर रखने के लिए। लेकिन इतनी मूढ़ अवस्था हो जाती है उसकी, वो ये नहीं समझता कि वो जो कष्ट हटाने के लिए जो कार्य करता है वही कार्य कष्टदायक हो जाता है। ये है द्वेष, है ना? और फिर आखिर में राग द्वेष अस्मिता अविद्या और पांचवा कौन सा है, हाँ किसी को याद है, मोह नहीं, खैर और एक है या तो इस, हाँ
क्रोध नहीं, इसी प्रकार का है, एक टेक्निकल वर्ड है, भूल गए, बहुत पहले पढ़ा है। तो ये पांच प्रकार के अविद्याएं हैं जिसके भीतर जीव फंस जाता है, और फंसने के बाद में जीव को पता नहीं चलता कि उसे कौन से कार्य करने चाहिए, और इसी बात का वर्णन यहाँ श्लोक में ब्रह्मा जी कर रहे हैं। यहाँ अनेक प्रकार के अविद्याएं, पांच प्रकार के अविद्याओं का वर्णन है, अंधतामिश्रम, तामिश्रम, महामोहम और मोहम, मोहम तमह। तो ये पांच प्रकार के अज्ञान बताए गए हैं, अविद्याएं। वास्तव में जीव का स्वरूप है विद्या, सच्चिदानंद, चित मतलब आनंद या चित मतलब ज्ञान से पूर्ण। तो विद्या जो है ये जीव का स्वरूप है, लेकिन जितना जीव ये अविद्या के प्रभाव में पड़ जाता है तो उसकी उसका जो सच्चा ज्ञान है वो ढक जाता है, और जीव अपने आप को भूल जाता है, और फिर अविद्या को ही विद्या मान लेता है, ज्ञान को अज्ञान को ही ज्ञान मान लेता है। इसलिए हम देखते हैं संसार में जो लोग बहुत भौतिक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि हमारे पास विद्या है, और जिनके पास ये भौतिक शिक्षा नहीं है ये अज्ञानी हैं। लेकिन वास्तव में भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि ये जो भौतिक ज्ञान है वास्तव में ये भी अविद्या है, ये भी अज्ञान है। वो अपने भजन में बताते हैं, जड़ विद्या सभी मायर वैभव तुम्हारे भजन बाधा। वो कहते हैं ये सब जो नाना प्रकार के जड़ विद्या है जिसको हम विद्या कहते हैं, वास्तव में ये क्या है, ये माया का वैभव है सब। और माया इसे क्या करती है, हमारे भजन में बंधन आके खड़ा करती है, तुम्हारे भजन है बाधा। और फिर क्या, मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीव के करो करे गाधा, ये है अविद्या, है ना। फिर क्या होता है, जब बहुत विद्या तथाकथित विद्या अर्थात जो ऐसे भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, भजन तो नष्ट हो ही जाता है, लेकिन फिर क्या होता है, मोह जन्मिए, मोह जन्म हो जाता है, और फिर जीव अपने आप को गधा बना देता है। क्यों गधा बनाता है ये, क्योंकि गधे की तरह फिर वो परिश्रम करता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है उसको सुबह से रात तक, और सोचता है कि मैं कितना सुखी हूं, है तो बहुत दुखी लेकिन इतना परिश्रम करता है, सोचता है मैं बड़ा सुखी हूं। ये है गधा, गधे की प्रवृत्ति। इसलिए यहां सब संसार में जीव गधे के समान है, ये भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। और इसलिए संसार को पवर्ग बताया गया है, श्रीमद् भागवत में यह शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पवर्ग। जैसे आप जानते हैं देवनागरी जो अक्षर है क ख ग ग ङ, तो वो है क वर्ग, है ना। तो उसी प्रकार से पवर्ग, पवर्ग मतलब क्या है, प फ ब भ म, है ना। तो ये संसार है प फ ब भ म, पांच चीजें। देखिए पांच जो अंक है ये शास्त्रों में बहुत बार आता है, हमारे पांच इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच जो महाभूत हैं, है ना, नाना प्रकार के पांच ये जो अंक है बहुत बार आता है, है ना, पांच प्रकार के अविद्याएं इस प्रकार से। तो प प ब भ म ये क्या है, प मतलब परिश्रम, हर एक जीव को यह आकर परिश्रम करना पड़ता है, है ना, परिश्रम के अलावा काम होता नहीं है। अगर कोई भी सोचता है कि मैं आराम से जीऊंगा तो यह संभव नहीं है, उसे परिश्रम करना ही पड़ेगा। प्रकृति स्थानी कर्षति, ये कर्षण, ये जो इस संसार में संघर्ष का ये संसार है, और जो परिश्रम करता है इतना परिश्रम करता है कि मुंह से फेण आने लगते हैं, फ जैसे गधे के मुंह से फेण आते हैं, धोबी चाबुक मार मार कर, छड़ी मार मार कर गधे से काम करा लेता है, बेचारा गधा इधर से उधर धोबी घाट से नदी वो घर में, और फिर वापस उसको दिन रात आना पड़ता है, फिर परिश्रम करते करते मुंह से फेण आ जाते हैं, फोम। तो उसी प्रकार से बद्ध जीव संसार में सुबह से रात तक कार्य करता है, सुबह सोचता है मैं कितना जिम्मेदारी मैंने ली है, इन जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा, आखिर मैं नहीं निभाऊंगा तो और कौन निभाएगा, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी उठाने के लिए क्या आवश्यकता थी वो जीव कभी सोचता नहीं है और इसलिए अंधा होकर परिश्रम करता है और मुंह से फेण आने लगते हैं। प फ और फिर भ, प फ ब, ब आता है पहले, तो ब से क्या होता है, ब से बंधन, कर्म बंधन। कर्म बंधन होता है मतलब ये ऐसे परिश्रम करता है क्योंकि अज्ञानी है, उसे ये नहीं मालूम होता है कि कैसे कार्य करने चाहिए और कैसे कार्य नहीं करने चाहिए, इसलिए पाप कर्म कर बैठता है। पाप कर्म करता है तो कर्म बंधन में फंस जाता है, तो बंधन, और कर्म बंधन में फंस जाता है तो फिर क्या होती है, भ, भ मतलब भीति, भय, और ये भय उत्पन्न हो जाता है कि फिर क्या होगा, अब कल क्या होगा, मेरा पैसा चले जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे परिवार मेरे से अलग हो जाएंगे, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हर प्रकार का भय जीव के भीतर जागृत हो जाता है। ये भय का सागर है, हर एक व्यक्ति भयभीत है, कीड़े से लेकर राजा तक हर व्यक्ति अपने स्थान के प्रति भयभीत है, कल क्या होगा, यहाँ क्या होगा, तो ये भय हो जाता है। और फिर अंत में डरते डरते परिश्रम करते करते फिर निकलते निकलते क्या हो जाता है, मृत्यु, मृत्यु आ जाती है, मर जाता है आदमी। यह है इतिहास, प फ ब भ म कर लिया, फिर से प फ ब भ म, फिर से प फ ब भ म, ये चलता रहता है, क ख ग कभी होता नहीं है, केवल प फ ब भ म में चलते रहता है, यही इतिहास है जीव का, है ना। तो इस प्रकार से बताया जाता है कि जीव का बंधन किस प्रकार से होता है, कैसे जीव ये संसार में खामखा फंस जाता है, कोई आवश्यकता नहीं होती है जीव को ऐसे बंधन में पड़ने के लिए, लेकिन फिर भी पड़ जाता है और फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि अगर जीव अपने स्वरूप को भूलता नहीं है तो उसे ये संसार में रहना असंभव हो जाएगा। हम देखते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं वो संसार में टिक नहीं पाते हैं, तो क्या संसार है, वो कोशिश करते हैं कोशिश करते हैं, फिर इतना हैरान हो जाते हैं कि भगवान से कहते हैं हमसे यहां, हम इसे यहां से ले जाओ, हम रह नहीं पाते यहां पे। तो शुद्ध भक्त जो है ये संसार में टिक नहीं पाते, रह नहीं पाते, क्यों, क्योंकि उनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है, इसलिए उनको मालूम है कि वो कौन है, उनके कहां जाना है, कैसे कार्य करने हैं, ये पूरा ज्ञान है उनको, इसलिए वो यहां रहना नहीं चाहते। लेकिन जो लोग यहाँ जिनका अज्ञान है, जिनका स्वरूप ज्ञान नष्ट हो चुका है या ढक गया है, नष्ट तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन जो ढक गया है तो वो हमेशा यहां रहना चाहते हैं, सोचते हैं कि यही सब कुछ है ना। इसलिए वो कहानी आप जानते हैं, इंद्रदेव की कहानी जानते हैं, जब इंद्रदेव को शाप मिला कि उनको एक सुअर का शरीर मिलना है, तो सुअर का शरीर प्राप्त कर लिया, और फिर उस समय इंद्रदेव का जो कुर्सी, इंद्रदेव की कुर्सी खाली रही स्वर्ग के राजा में, वहां कोई था नहीं, और जब बहुत समय बीत गया तो नारद मुनि सोच रहे थे कि स्वर्ग की गद्दी में कोई बैठा नहीं है और ये इंद्रदेव जो हैं ये सुअर के शरीर में रमण कर रहे हैं, तब क्या किया जाए। तो वहां गए इंद्र के पास में और देखा कि इंद्र वहां बड़े आनंद में भोग कर रहे हैं, उनके पास में कई रानियां हैं, वो राजा बन गए थे क्योंकि स्वर्ग के राजा थे ना, तो स्वर्ग के राजा होकर जब सुअर के शरीर में आए हैं तो कम से कम सुअरों के बीच में राजा तो होना चाहिए। तो फिर वो राजा बने, वहां कई रानियां थी, कई छोटे छोटे उनके क्या कहते हैं सुअर के बच्चों को, उनके जो भी है क्या, उनके बहुत सारे बच्चे थे, तो इस प्रकार से अपना जीवन बिता रहे थे, बड़े आनंद से सोच रहे थे सब लोग मेरे ऊपर निर्भर हैं, ये सुअर का समाज कैसे चलेगा मेरे बिना, और मैं हूं, मैं ही सब प्राणियों का देखभाल कर रहा हूं और सब कुछ मेरे वजह से चल रहा है, जैसे हमारे राजनीति में लोग सोचते हैं, वो ये नहीं जानते कि अगर वो चले जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो रहते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन उस यही चेतना हो जाती है कि मेरी यहां आवश्यकता है। ये भी एक अविद्या अज्ञान है कि मेरे यहां आवश्यकता है, मेरे बिना कुछ चलेगा नहीं। तो इंद्रदेव भी ऐसे सोच रहे थे। तो इंद्र जब नारद मुनि उनके पास आए, कहने लगे कि चलो भाई, स्वर्ग की गद्दी खाली है तुम्हारे लिए, जो श्राप का समय है वो बीत चुका है, अब चलो वापस। तो इंद्रदेव कहने लगे, मैं कैसे आ सकता हूं, देखो मेरी इतने रानियां हैं, इतने अच्छी मीठे स्वर से मेरे साथ बात करती है, अन्य जो पत्नियां देखो कैसे बात करते हैं अपने पति से, लेकिन मेरी पत्नी देखो कैसे अच्छे तरह से बात करती है, और मेरे बच्चे देखो कैसे मेरे हर बात को मानते हैं, अन्य बच्चों को देखो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, लेकिन हमारे बच्चे हर बात को मानते हैं, और मैं इतना सब कर रहा हूं, मैंने इतने सब योजनाएं बनाई हैं इनके उद्धार के लिए, अब इनका क्या होगा मैं चलू आऊंगा तो। तो नारद मुनि को पता चला कि अब तो मामला बड़ा कठिन है, अब क्या किया जाए। तो नारद मुनि ने कृपा की, उनको खत्म कर दिया और फिर वापस इंद्रदेव को वहां ले चले। तो यह है अज्ञान। अज्ञान मतलब हम सोचते हैं कि वाह कितनी सुंदर जगह है ये, और थोड़ा भी कुछ सुख प्राप्त कर लेते हैं तो ये प्रवृत्ति, ये जो इच्छा है, ये जो विश्वास हमारे अंदर है वो और भी दृढ़ हो जाता है, और फिर जीव इतना मूर्ख बन जाता है, गधे जैसा बन जाता है कि बार 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 माया के धक्के लात खाने के बाद में भी ये विश्वास उसका टूटता नहीं है। जब गधे को कितना भी आप मारे हैं वो फिर से वहीं आएगा, कितना भी मारे फिर से आएगा। उसी प्रकार जीव को बार बार हर जीवन में लात धक्के थप्पड़ मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी सोचता है नहीं नहीं कितनी अच्छी जगह है, कितनी अच्छी जगह है, वाह मैं यहां रहना चाहता हूं, और भी रहना चाहता हूं। प्रभुपाद क्या कहते थे, उनके एक मित्र थे, मृत्यु के समय वो डॉक्टर से प्रार्थना कर रहे थे, मुझे केवल 2 साल और दीजिए, मुझे फैक्ट्रियों की और बढ़ाना है, और ये करना है, मेरी और ये योजना है। तड़प रहे हैं बीमारी की वजह से, बात नहीं कर पा रहे हैं, और इतना दर्द हो रहा है शरीर में, लेकिन फिर भी फैक्ट्रियों बनाने के लिए उनको 2 साल और चाहिए। दर्द हो रहा है कोई बात नहीं है, बच्चे को उनके देखभाल नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमें और जीना है फैक्ट्री बनाने के लिए, कारखाना बनाने के लिए। ये है अज्ञान। इतनी शक्तिशाली है माया कि हमें ये ख्याल देती है कि बस यही हमें रहना है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक जीव अपने स्वरूप को भूलता नहीं है तब तक वो ये संसार में रह नहीं सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी का ये कार्य है कि 5 प्रकार के अज्ञान बनाए, 5 प्रकार के अविद्या बनाए। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे ही ये अविद्या पैदा हो जाता है तो भय हो जाता है, सब जगह भय हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये स्वरूप है, अज्ञान का एक परिणाम है भय होना। श्रीमद् भागवत में नवयोगेंद्र संवाद में ये श्लोक को कहते हैं, भयम् द्वितीयाभिनिवेशितः स्यात्। हाँ, अभिनिवेश अभी आ गया, वो जो 5वां जो मैं भूल गया, अभिनिवेश है। इस श्लोक में शब्द आया तो याद आ गया। अभिनिवेश का मतलब है एब्जॉर्प्शन, मग्न हो जाना, अपने शरीर और शारीरिक वातावरण में मग्न हो जाना, अभिनिवेश। इसको ये 5वें प्रकार का विद्या है। तो यहां नव योगेंद्र बताते हैं, भयम् द्वितीयाभिनिवेशितः स्याद् ईशादपि तस्य विपर्ययो अस्मृतिः। वो कहते हैं ईशाद अपेतस्य, ईश मतलब भगवान श्री कृष्ण के, अपेतस्य मतलब जब हम विमुख हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, अस्मृति जागृत हो जाती है, और इसकी वजह से हम माया के प्रभाव में पड़ जाते हैं। तन माया तो बुध आभजे तम भक्ते कैशाम गुरु देवतात्मा। कि जब जीव ऐसे भगवान को पीठ दिखा लेता है तो फिर क्या होता है, और उसका मन अभिनिवेश मग्न हो जाता है, किसमें, द्वितीय ईश्वर को छोड़कर किसी द्वितीय वस्तु में अर्थात माया में मन मग्न हो जाता है। और जब ऐसे माया ग्रस्त मन हो जाता है तो क्या हो जाता है, भयम, भय जागृत हो जाता है। तन माया तो, ये है भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति। इसलिए जो बुध, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, आभजे तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो श्री कृष्ण के भजन का एकाग्र चित्त से भक्ति करते हैं। तो ये श्लोक में भय का कारण भी बताया हुआ है और भय से मुक्त होने का जो उपाय है वो भी बताया हुआ है। जो व्यक्ति भगवान श्री हरि का भक्त बन जाता है उसके लिए कोई भय नहीं, शोक नहीं, कुछ नहीं, निर्भय हो जाता है। इसलिए जो दिव्य गुण बताए गए हैं गीता के 16वें अध्याय में, उसमें अभयम एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। प्रभुपाद जी बताते हैं, आपने 16वां अध्याय देखा होगा, 16वें अध्याय गीता में भगवान क्या किन चीजों का वर्णन करते हैं, असुरी गुण और दैवी गुण। और दैवी गुणों का जब वर्णन करते हैं श्री कृष्ण, तो उनमें अभयम ये गुण आता है। और प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या करते हैं, टीका देकर कहते हैं कि पहले 3 गुण सन्यासी के लिए होने चाहिए, बाद में 3 गुण जो है गृहस्थ के लिए होने चाहिए, बाद में 1 गुण ब्रह्मचारी के लिए, बाद में 1 गुण वानप्रस्थ के लिए। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के गुण होने चाहिए, लेकिन वास्तव में ये गुण सबको होने चाहिए, लेकिन विशेषतः ये जो वर्ग बताए हैं इनके लिए ये सब होने चाहिए। तो अभयम सन्यासी के लिए क्यों बताया गया है, क्योंकि सन्यासी को निडर होना चाहिए, नहीं तो सन्यास नहीं लेना चाहिए। जंगल में जाएंगे सन्यासी और सोचेंगे अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, कोई सांप आया, कोई शेर आया, अभी आया, वो आया, हा? तो डर जाएगा, तो अपने साधन नहीं कर पाएगा। कई साल पहले हम दक्षिण कन्नड़ में गए थे और वहां सह्याद्री पर्वतों का जो रेंज है, महाराष्ट्र से नीचे बिल्कुल कर्नाटक तक चलता है, और वहां पे एक बहुत सुंदर स्थान है वरह क्षेत्र, और वो क्षेत्र एक तीर्थ स्थान है। और इसका महत्व ये बताया जाता है कि जब वरह देव ने ये पृथ्वी को उठाया गर्भोदक सागर से, तो उनके क्या कहते हैं हॉर्न को, दांत, जब उन्होंने उठाया तो जहां उन्होंने स्पर्श किया अपने दांत से, तो वो जगह है वो वरह क्षेत्र। और इस वरह क्षेत्र में इस्कॉन के भक्त ने एक बड़ा सा आश्रम बनाया हुआ था, बहुत बड़ा आश्रम, जिसको वरह वन नाम दिया उन्होंने। और इतना सुंदर, इतना अति सुंदर कि आप कृष्ण को भूल जाएंगे, इतना सुंदर। आप वहां जाओगे तो आपको लगेगा कि स्वर्ग नहीं सीधा वैकुंठ है, लेकिन फर्क केवल इतना है कि वैकुंठ में जाने से कृष्ण की याद आती है, स्वर्ग में जाने से कृष्ण को भूल जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि स्वर्ग इतना सुंदर। हम जब वहां पहुंचे तो सब लोग, भक्त लोग केवल मुंह खोलकर देख रहे थे, क्या चमत्कार है ये, कितना सुंदर भगवान ने बनाया है। और बरसात का मौसम था तो सब कुछ हरा भरा, हरा भरा, और हर जगह केवल आश्रम को छोड़कर हर जगह घना जंगल। ऐसा जंगल जो शायद आपने कभी देखा नहीं होगा, वास्तविक जो जंगल कहते हैं ना, यह जंगल। हम जो यहाँ महाबलेश्वर यहाँ वहां देखते हैं, एक पेड़ यहाँ एक पेड़ वहां, है ना, ये जंगल नहीं है। सच्चा जंगल अगर देखना है तो वहां। तो जब वहां गए इतने प्रभावित हो गए, लेकिन वहां रहना है तो अभय होना है, क्योंकि वहां वो अकेले रहते थे अपने पत्नी के साथ में। उनकी पत्नी एक कुटीर में रहती थी एक पर्वत के ऊपर, और वो दूसरे कुटिया में रहते थे दूसरे पर्वत पर, और वो अपने छोटे बच्ची को लेकर रहती थी। देखिए भगवान के ऊपर श्रद्धा कितनी होनी चाहिए। और वो प्रभु बता रहे थे, वो भक्त बता रहे थे कि बहुत बार रात को वो जाग जाते थे नींद से, सब अंधकार, वहां कोई बिजली नहीं, कुछ नहीं, जानबूझकर उन्होंने बिजली नहीं लगाई, केवल लैंटर्न से और मोमबत्ती से काम चलाया करते थे, और वराहदेव की मूर्ति है वहां, भजन कीर्तन बस यही चलता रहता था। और वहां सब अच्छे अच्छे उन्होंने फलों के वृक्ष लगाए हुए थे, वो एक अच्छी बात है, पाइनएप्पल केला जो चाहे आप जितना खा सकते हैं, लेकिन रात को अगर रह पाएंगे आप अकेले तो जितना चाहे दिन में खा सकते हैं, लेकिन लोग रात में रह ही नहीं पाते हैं तो खाएंगे क्या, फिर भाग के चले जाते थे वहां से। कभी कभी वन से ऐसे अद्भुत आवाजें आ जाती थी, कभी हवा की आवाज, कभी ऐसी आवाज वैसी आवाज, तो लोग रह नहीं पाते थे। तो ये प्रभु बताते थे कि जंगल से कई बार रात को वो जाग जाते थे, कोई अंदर से आवाज आ रही, गोविंदा गोविंदा ऐसी आवाज आ रही है, मतलब कोई साधु वगैरह वो जंगल के अंदर तप कर रहे हैं और अंदर घूम रहे हैं, उस घने जंगल में रात में अंधकार में घूम रहे हैं और गोविंदा गोविंदा बोल रहे हैं और ये आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो देखिए वन अभय कैसे अभय, जहां गोविंद श्री कृष्ण का नाम है वहां भय नहीं रहता है। तो ये साधु ऐसे कई जगह हैं जो अभी शायद अभी अपने आप को प्रकट नहीं कर रहे हैं, वो अपने अपने तीर्थ स्थान में हिमालय में कहीं कोई जंगल में इधर उधर रहते हैं और अपनी साधना करते हैं और बाहर नहीं आते हैं। ऐसे अभी भी कोई ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये सह्याद्री में बहुत सारे तीर्थ स्थान है जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जो अभी प्रकट नहीं है, और जितने जो भी कोई प्रकट हैं उनमें से भी लोग जाने डर जाते हैं, जंगल है पहाड़ है ये है वो है, खाने पीने का क्या होगा, सोना क्या होगा। तो इसीलिए वहां हमने एक हफ्ता रहने का कोशिश की, एक कुटीर में उधर रह पाए किसी न किसी तरह, लेकिन मुश्किल है मुश्किल है, एक बिल्कुल कृष्ण भावना भावित रहना पड़ता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा कृष्ण का स्मरण करता है, कैसे वो व्यक्ति जो साधु थे वो जंगल के भीतर जाके गोविंदा गोविंदा आराम से चिल्ला रहे हैं, क्या कहां से उनको ये शक्ति मिली? वो कृष्ण भक्ति से उनको शक्ति मिली। और ये प्रभु बताते थे कि वहां कई बार वो जंगल से शेर की आवाज उनको सुनाई देती थी बहुत दूर से। और यही जो जगह है जहां श्रृंगेरी मठ है, जहां शंकराचार्य ने अपना मठ खोला था पहले, ऋषि श्रृंग नाम का ऋषि, और बहुत इतिहास है इसका, महाभारत रामायण में से जाता है इसका इतिहास। तो कहने का मतलब है कि जहां श्री कृष्ण का नाम है सारी अविद्या दूर हो जाती है, सारे भय दूर हो जाता है ना। इसलिए ये हमारा पथ है, अभय चरणारविंद रे, बस ये हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में आएंगे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, बस ये हमारा फॉर्मूला है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार से श्री कृष्ण के नाम में अगर हम रुचि जागृत कराएंगे, हमारी साधना अच्छी तरह से करेंगे, तो हम भी निर्भय होकर ये संसार में जी सकते हैं, और जब ये देह को त्यागने का समय आएगा तो हम भी भगवान के धाम में जा सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न इत्यादि? हाँ जी गुड़ा कृष्ण प्रभु। हाँ जी हाँ। प्रश्न ये है कि यहां बताया गया है कि ब्रह्मा जी के द्वारा ये अविद्या का सृजन हुआ, तो माया देवी का रोल इसमें क्या है? वास्तव में ब्रह्मा जी का कार्य इतना ही है कि इन चीजों को बना देते हैं, फिर इनका प्रभाव जीवात्मा के ऊपर लगाना और उनको बनाए रखना इस माया इस अज्ञान में, वो माया देवी का काम है। माया देवी ऊपर से पहले फेंक देती हैं और जब आ जाती हैं तो फिर उनको ढक लेती हैं, ये है माया देवी का कार्य। ब्रह्मा जी को केवल वातावरण बनाना है, जीवों को शरीर देना है, उनको लोक या ग्रह देने हैं, और फिर वो वातावरण बनाना है, फिर माया देवी काम शुरू कर देती है। जब तक जीव सुप्त अवस्था में है, वो गर्भदक्षाय विष्णु के दिव्य देह में वो सुप्त अवस्था में रहते हैं, जब ब्रह्मा जी उनको प्रकट कराते हैं तो वे तुरंत माया जाल फंस जाते हैं। आचार्य हैं प्रश्न है कि ब्रह्मा जी हमारे परंपरा, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया सबसे पहले, ब्रह्मा जी हमारे परंपरा के अधिष्ठाता आचार्य भी हैं, तो ब्रह्मा जी ज्ञान देते हैं तो यहां अज्ञान क्यों दे रहे हैं? ब्रह्मा जी के दो स्वरूप होते हैं, एक स्वरूप में वो सृष्टि करता है और दूसरे स्वरूप में वो भक्त है और आचार्य हैं। जब उनका कार्य होता है, जैसे हम देखते हैं मंदिर में कोई मैनेजर होते हैं, भक्त भी हैं मैनेजर भी है, मैनेजमेंट जब का काम करते हैं तो उनको कई चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन भक्त भी हैं तो उनको भक्ति के कार्य भी करने पड़ते हैं। ब्रह्मा जी के मैनेजमेंट का कार्य है सब, और ब्रह्मा जी के भक्त का स्वरूप है जब वो शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न है कि शुद्ध भक्त जो है वो भी सोचते हैं ये सब बेकार दुनिया है, इसमें रह से क्या करना है, हमें जाना है वापस। और जो बहुत पीड़ित व्यक्ति है कभी कभी वो भी सोचता है हमें रहना नहीं है, तंग आ गए, आत्महत्या कर लेंगे इत्यादि। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो पीड़ित व्यक्ति है, अज्ञानी है, जिस वजह से वो पीड़ित है, जो आत्महत्या करना चाहता है, उस पीड़ा को हटा दीजिए फिर वो आत्महत्या करना चाहेगा? हाँ, फिर सोचेगा नहीं नहीं मुझे यहां रहना, अब सब ठीक हो गया। उसका जो विश्वास है कि ये संसार दुखमयी है, क्षणिक है, जब तक उसके इंद्रियों को तृप्त नहीं कर सकता तब तक सोचता है दुखी है। जब थोड़ा कुछ सुख मिल जाता है, आ सब ठीक हो गया, सब अब बिल्कुल ठीक है, टिप टॉप सब कुछ, फिर से एकदम उसमें पड़ जाता, अरे मैं आत्महत्या करूंगा, फिर वो भूल जाता है, विस्मृति, बहुत जल्दी जीव भूल जाता है। लेकिन शुद्ध भक्त ऐसा नहीं है। शुद्ध भक्त को भले सुख मिले दुख मिले, जानता है कि अब सुख मिल रहा है, इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, धोखे में नहीं पड़ना चाहिए कि अब सब कुछ सुखी होगा। नहीं, अभी सुख है, सुख तो चलना ही, दुख तो चलेगा ही, ये सुख भी सुख क्या, ये तो दुख का ही दूसरा रूप है ये। तो शुद्ध भक्त अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं वो ऐसे नहीं जानते। इसलिए थोड़े समय के लिए आप, लेकिन बहुत लोग हमारे पास आए, हम आत्महत्या करना चाहते हैं, नहीं करते हैं, कर सकते हैं नहीं करते हैं। फिर थोड़ा बहुत उनको शांति मिल जाती है, फिर हाँ अभी नहीं करेंगे, अब सब ठीक हो गया, फिर से जोश से काम करते हैं, अरे भाई कल आत्महत्या करने वाले थे, क्या हुआ, नहीं नहीं अब वो ठीक हो गया है ना। तो किसी भी चीज में उनमें दृढ़ता नहीं होती है, बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन, बहुशाखा ही नान्तस्य बुद्धयो अव्यवसाय नाम, बहुशाखा इधर उधर इधर उधर इधर उधर बुद्धि लगने लगती है, कोई स्थिरता नहीं आती है उनके बुद्धि में। कृष्ण भक्त के मन में स्थिरता आती है, जो तय कर लेता है वही करता है। ये बात श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताई गौर अभिमानंदे।